एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे पार्ट टू जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारा पॉइंट चल रहा था, तो आज हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसमें नुपुर हमारे साथ कुछ एग्जाम शेयर करेंगी जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं था, लेकिन कैसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे उन्होंने बिलीव करना स्टार्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं नुपुर। अब हम कुछ एग्जांपल्स जानना चाहते हैं, जिस तरह से तुमने बहुत सारे लोगों को कोच किया है, ट्रेन किया है और उनकी हेल्प की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने में, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम हमारे साथ शेयर कर सकती हो?
हाँ, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, मैं कुछ तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और इनफैक्ट वो कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं, सुनने में शायद सिंपल लगते हैं, बट यू नो, जिनके साथ वो हुआ होता है उनके लिए इट्स अ बिग थिंग। तो और उनमें से जो कई एग्जांपल्स हैं वो मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग थे जब यू नो मैंने वो सुने थे। तो आई विल स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड सब कुछ ऑलमोस्ट इंक्लूड हो जाता है। तो वो मेरी स्टूडेंट है जहाँ पे मैं ट्रेन कर रही थी, तो उसको यू नो हम लोग ने क्लास में विजन बोर्ड बनाने की बात की थी, एंड बहुत ही एंथुजियाज्म से उसने अपना विजन बोर्ड क्रिएट किया था। उसको एक पेट चाहिए था, डॉग, और उसको जो ब्रीड चाहिए थी डॉग की वो थी बीगल। तो उसने एक बीगल का फोटो अपने विजन बोर्ड पे लगाया हुआ था, और जब उसकी मॉम ने वो फोटो देखा तो उन्होंने कहा कि क्यों लगाया ये फोटो, हम तो कभी पेट लाने वाले हैं नहीं। एंड शी वॉज वेरी श्योर व्हेन शी हैड पुट द पिक्चर कि शी वॉन्ट्स अ बीगल लाइक वेरी मच, एंड वो ये चीज के लिए भी श्योर थी कि यू नो उसके घर में कभी अलाउ नहीं करेंगे पेट रखने को। बट कपल ऑफ मंथ्स लेटर, नॉट इवन वेरी लॉन्ग बट आई थिंक अबाउट 4 months के अंदर अंदर उसके घर पे वो डॉग आ गया था, एंड उन लोग ऐसे ट्रायल पीरियड के लिए लेके आए थे थोड़े टाइम के लिए उसको, 15-20 days के लिए। एंड वो क्योंकि जनरली यू नो सेम ब्रीड का डॉग विल लुक वेरी सिमिलर, तो जब उसके फ्रेंड्स या कोई विजिट करते थे तो उन लोग पूछते थे अरे तुमने इसका फोटो ऑलरेडी लगा के रखा है अपने यू नो वॉल के ऊपर। सो शी मैनिफेस्टेड अ डॉग फॉर हर सेल्फ, अ पेट फॉर हर सेल्फ, और फिर 20 days के बाद दे काइंड ऑफ यू नो वॉन्टेड टू गिव दैट डॉग अवे टू समबडी एल्स, क्योंकि उन लोग से मैनेज नहीं हो रहा था। बट इन 20 days उसके पेरेंट्स इतने अटैच हो गए थे उस डॉग से, उस पेट से, कि दे डिडंट वॉन्ट टू गिव हिम अवे। सो शी एंड सो शी मैनिफेस्टेड अ डॉग फॉर हर पेट फॉर हर सेल्फ, राइट? सो दिस माइट बी स्मॉल फॉर अस टू लिसन टू कि हाँ यू नो ठीक है पेट मिल गया ये वो, बट देन फॉर समबडी हु रियली वॉन्ट्स वन एंड उनको मिल गया इन अ सिचुएशन वेयर यू नो यू डोंट हैव एनी होप्स कि कभी भी अलाउ किया जाएगा घर में पेट को। सो दिस इज लाइक एन एग्जांपल व्हिच यू नो आई रियली रिमेंबर, जो जिसने दिस वाज द वेरी इनिशियल टाइम्स जब मैं विजन बोर्ड सिखाने लगी थी, एंड दिस इज समथिंग मेरा भी फेथ विजन बोर्ड के प्रोसेस में यू नो इंक्रीज कर दिया। फिर मैं जनरली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, क्योंकि हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर रहे थे, तो मैं आई डू बुक रीड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ बुक एंड हम लोग जूम पे वी मीट एंड आई फैसिलिटेट द बुक रीड। मतलब क्योंकि मैं सब्जेक्ट के बारे में जो लोग बुक रीड पे आते थे उनसे ज्यादा जानती हूँ, तो आई यूज टू फैसिलिटेट। मतलब हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं बुक में से, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो मेरे वन ऑफ द बुक रीड्स में मेरे पार्टिसिपेंट आए थे, एंड उनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड और ये सब के पावर में बिल्कुल भी बिलीफ नहीं था। जस्ट बिकॉज मेरी एक कजिन है, उनकी वो फ्रेंड थी, इसलिए उनके कहने पे वो आ गई। अब हर सेशन में, सो हमने कुछ 28 days का सेशन किया था, हर सेशन में शिवानी ऑलमोस्ट लास्ट के 20 minutes खाली वो मेरी पार्टिसिपेंट और मैं, मतलब खाली हम दोनों ही बात कर रहे होते थे, क्योंकि उनके पास इतने क्वेश्चंस होते थे, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें क्यों मांगना चाहिए, हमें क्यों ये करना चाहिए, ये वो। शी हैड सो मेनी क्वेश्चंस एंड एवरी पार्टिसिपेंट यू नो आफ्टर द सेशन यूज्ड टू पर्सनली मैसेज मी कि अरे इनको कितने क्वेश्चंस होते हैं, इनको क्या है, ये क्यों पूछते रहते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, she still used to come for every session, वो हर session attend करती थी, और उन्होंने मेरे साथ करीबन 2 books read की होंगे, और फिर हमने मैंने एक session किया था जिसमें हमने vision boards create किए थे, goals बनाने का पूरा process किया था, और वो करने के बाद उनका मेरे पास एक दिन रैंडमली फोन आया कि नुपुर मेरी लाइफ इतनी बदल गई है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मतलब उन्होंने कहा मैंने विजन बोर्ड एक्चुअली पेपर पे क्रिएट ही नहीं किया अभी तक, तो मैंने खाली लिखा ही था, पेपर पे क्रिएट करने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, बट इतना सब कुछ बदल गया है, मेरे बच्चे बदल गए हैं, मैं बदल गई हूँ, मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है, जबकि सब कुछ पहले भी अच्छा ही था, बट सब कुछ और इतना यू नो 10 times बेटर हो गया है। सो शी वॉज सो हैप्पी। एंड मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम समबडी जिसको बिल्कुल भी इस पावर पे बिलीव ही नहीं था। मतलब तुम मानोगी, जब वो मुझे क्वेश्चंस पूछती थी तो ऐसा लगता था कि मतलब अगर आपको इतना ही बिलीव, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू बिलीव ऑन दिस पावर, तो वाई आर यू बींग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बट यू नो वो कम्प्लीटली शी टर्न्ड एंड या इट वॉज लाइक अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। सो दिस इज अनदर ब्यूटिफुल एग्जाम्पल जो मुझे इट इंस्पायर्स मी टू यू नो कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। सो या ऐसे
ओके
और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं यू नो बिकॉज मैं तो आई हैव बीन इन टच विद सो मेनी पीपल एंड एक्चुअली ये पावर ही ऐसा है, इट्स नॉट अबाउट मी, बट देन इवन इफ यू और एनीबडी फॉर दैट मैटर, अगर आप उसको थोड़ा भी समझ के, एंड इट्स वेरी सिंपल, ओके मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि दिस थिंग इज रियली सिंपल टू डू। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ 15-20 books पढ़ने पड़ेंगे या यू नो कुछ बहुत सब कुछ अटेंड करना पड़ेगा। लाइक आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मेरी मेड है घर पे, तो मेरी सब मेड्स को ना माई मॉम हैज टॉट देम हाउ टू यूज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड लाइक वेरी सिंपली। ओके सो वॉट दे जस्ट हैव टू डू इज कुछ भी अगर उनको चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो उनको खाली दिन में अबाउट 20-30 times उनको जो भी चाहिए उसके आगे 3 thank you लगा के और वो चीज बोलनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वही मैं बता देती हूँ। सो माई मेड ना उनका कुछ कोर्ट का केस चल रहा था ओके बहुत टाइम से एंड शी रियली वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दैट केस। तो वॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू से इज दैट, सो हाउ डू यू से द सेंटेंसेस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये केस सॉल्व हो गया है। दैट्स द सिंपल सेंटेंस दैट यू आर सेइंग। व्हाट आर यू सेइंग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये केस सॉल्व हो गया है। ऑलराइट, सो ये आप एटलीस्ट नहीं नहीं करके भी 20 times तो आप बोले हुई एक दिन में। सो शी वॉज यूजिंग दिस पावर एंड यू वोंट बिलीव मतलब कि क्या हुआ और ये केस सॉल्व हो गया। यू नो वॉट, केस की फाइल मिसप्लेस हो गई, केस ही नहीं रहा। You know, it doesn't have to be necessary कि आप you know you have to be like somebody who's gone to school और बहुत पढ़ाई की हो और सब कुछ बहुत समझ आता हो, ये वो not necessary। It's not like ये power उनके लिए काम करता है जो you know जिनको सब सब चीजों की समझ होती है, maybe English आती है and things like that। Like I'm talking about my maid who's never gone to school। And
okay. तो वो जैसे फीलिंग्स के साथ बोलना होता है या आप जनरली नॉर्मली भी ऐसे आप बोल सकते हैं कि थैंक यू थैंक यू मेरा ये केस सॉल्व हो गया, थैंक यू मुझे ये चीज मिल गई है।
सी,
तो ये आप ऐसे
देखो इनिशियली जब आप बोलोगे ना तो शायद हो सकता है कि फीलिंग्स साथ में जेनरेट करना विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि आप उस सिचुएशन में यू नो आप उसकी ऑपोजिट सिचुएशन में हो।
यस
ओके, बट जैसे जैसे आप ये चीज बोलते जाओगे फीलिंग्स अपने आप जेनरेट होती जाएगी। सो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि फर्स्ट 5 times में आपको वो फीलिंग जेनरेट हो जाएगी। हाँ, बट बाय द 20th time आपको वो फीलिंग धीरे धीरे आने लगेगी। ओके, एंड लेट इट कम टू यू नेचुरली। और जब आप
एक दिन में 20 times,
हाँ एटलीस्ट 20 times बोलो,
कितने मंथ?
तो ऐसा कुछ मंथ्स, सी मैंने Like I told you, it's not about the time, it's about the alignment.
Achha,
so okay. the faster you get aligned with, you know, the energy, the faster aapki cheez manifest ho jayegi.
तो और जैसे हम अपना जो अलाइनमेंट है वो यूनिवर्स के साथ और कैसे बिठा सकते हैं और फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं?
वेरी गुड क्वेश्चन शिवानी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल जो यू नो विच विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली कि हम अपने अलाइनमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं या हम कैसे अलाइंड रह सकते हैं। अलाइनमेंट बढ़ा तो नहीं सकते बट हम अलाइनमेंट को खो देते हैं बहुत बार। तो अगर आपने एक फोन है उसको चार्ज करने के लिए रखा ओके और आप बार बार उस फोन को हिलाते जा रहे हैं, वो चार्जर थोड़ा सा यू नो द सॉकेट में जब वो जाता है पिन, तो वो थोड़ा सा लूज है, तो आप क्या कर रहे हैं, बार बार उसको चेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं. ओके तो आप एक घंटे बाद देखते हैं तो आपको क्या लगता है कितना चार्ज हुआ होगा आपका फोन? इट बी लेस चार्ज, बहुत कम, राइट? वाई? बिकॉज आप बार बार उस वायर को हिलाते जा रहे थे. अगर आप उसको, तो हमारा क्या है ना, ऊपर जैसे जो भी आप एक पावर जिसमें भी बिलीव करते हैं, भगवान, यूनिवर्स, यू नो, व्हाटएवर यू बिलीव इन, उसके साथ आप समझ लो कि आपका एक वायर कनेक्टेड है. ओके अब आप जब भी बुरा लगाते हैं कोई भी चीज का, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, ज्यादा सैड हो जाते हैं, ये सब जो नेगेटिव इमोशंस है जो आप जब ये ज्यादा फील करते हैं, तो एवरी टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस दीज नेगेटिव इमोशंस, आप अपने वायर को हिलाते जा रहे हैं.
ओके
एंड जितना ज्यादा आप अपने आप को सेंटर्ड रखेंगे, उतना ज्यादा यू नो आपकी चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आपको वायर डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो अलाइनमेंट जितना ज्यादा रहेगा, उतना जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होती है. अब मैंने आपको पहले भी कहा था, बिकॉज यू हैड आस्क मी अ क्वेश्चन वेर यू आस्क मी कि यू नो जब हम सैड हो जाते हैं, चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती है, तब हमें अपने आप को कैसे संभालना चाहिए. और हमने ये बात की थी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यू नो वो इमोशन को फील करिए और उसके बाद डिसाइड करो कि आप नहीं करोगे. तब मैंने आपको कहा था कि मैं इसके बारे में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इसके पहले की स्टोरी, कि आप वहां तक पहुंचे ही ना कि यू नो आपको बुरा लगे. सो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो काफी बार हम क्या करते हैं ना, हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, लोग हम जैसा बोले वैसा करें, या हमारे बिना बोले ही समझ जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, काफी बार, विच इज नॉट फेयर टू बी फ्रैंक ऑन द अदर पर्सन्स पार्ट, क्योंकि आप भी कितनी बार नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. ओके तो हर बार जब आप किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनको अपनी जगह पे रख के देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एम्पथी बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है. एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एम्पथी रखना, खुद को दूसरे की जगह पे रख के देखना. हम काफी बार खुद के इमोशंस और खुद के नजरिए में इतने ब्लाइंडेड होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उनके नजरिए से भी सोचें. और जैसे ही आप ये करेंगे, when you will think from the other person's perspective, आप देखेंगे तुरंत you know there'll be such a huge difference in the way you are handling the situation. कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप expect मत करो, पर अगर आप expect कर रहे हो, तो हो सकता है ना कि सामने वाले को पता ही ना हो कि आप क्या expect कर रहे हो, right? उन्हें कोई idea ही नहीं हो, तो at least आप एक बार उनसे communicate तो कर सकते हैं कि आप क्या expect कर रहे हैं. राइट कि हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि आपको यू नो कुछ एक्स वाई जेड चीज खानी पसंद है, या आपको बाहर घूमना पसंद है, या आपको घर में बैठना पसंद है, या कुछ भी पसंद हो. आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से कि यू नो वो आपको पूछे करे सब कुछ, तो आप एक बार उनसे कम्युनिकेट कर देना कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, और फिर आप फिर भी अगर वो नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. बट हम काफी बार क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं बिना उन्हें बताए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. राइट और आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखिए, अगर कोई आपसे रूठ के बैठा है, बुरा लगा के बैठा है, और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ, दिल बी लाइक कि आपने ये नहीं किया, बट यू विल बी लाइक मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मुझे करना भी था. मुझे पता होता आई वुड हैव डन इट, मुझे पता होता तो मैंने जरूर किया होता, पर मुझे पता ही नहीं था. सो यू नो हम क्या करते हैं ना, अजम्पशन. काफी बार हम ना खुद के दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फिर वो सिचुएशन ठीक से नहीं गई तो हम बुरा लगा के बैठ जाते हैं, गुस्सा होके बैठ जाते हैं. यू नो वी डू इट ऑल बाय आवरसेल्व्स ओनली इन द हेड, एंड देन वी विल ब्लेम द अदर पर्सन कि आपने ऐसा नहीं किया. राइट सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जस्ट दिस इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स, पर हाँ दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम यू नो वी कैन टेक केयर ऑफ. के फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक from the other person's perspective also. कि हम भी expect करते हैं कि सामने वाला हमारे नजरिए से सोचे, हमें समझे. So हमें भी उतना ही effort खुद की तरफ से भी करना चाहिए, rather than just expecting, expecting and expecting, right?
मदर जो
बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं, एक दूसरी फैमिली में आई होती हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैं एक्सपेक्टेशंस को नहीं, मीन्स एक्सपेक्टेशंस एकदम अलग हो जाता है, और वो होता है जो फैमिली का पार्ट होता है, अगर आप किसी को कुछ कह दो तो उन्हें खराब लग जाता है, या फिर आपका भी मूड खराब हो जाता है, मीन्स एक वुमेन का भी मूड खराब हो जाता है, तो उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और जैसे तुमने बताया कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए उसके लिए तुम्हें काम करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके
डेफिनेटली.
लिए क्या ऐसा। यस
सी वन थिंग आई कैन लाइक एक एक ट्रिक है मैं दे सकती हूँ. आई कैन कॉल इट अ ट्रिक.
प्लीज
देर इज
प्लीज।
समथिंग कॉल्ड एज लव लैंग्वेजेस. ओके, सो लव लैंग्वेजेस करके एक कॉन्सेप्ट है, एक बुक है, लव लैंग्वेजेस, द 5 लव लैंग्वेजेस. तो ये बुक इज नॉट नेसेसरली ओनली मेंट फॉर कपल्स. ओके, हम सब की एक अलग लव लैंग्वेज होती है. तो जो ऑथर है उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली लव लैंग्वेजेस को 5 लैंग्वेजेस में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट है गिफ्ट्स, ठीक है. फिर सेकंड आता है वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, मतलब तारीफ करना या आपने कुछ अच्छा किया है तो बोलना कि हाँ आपने किया. फिर आता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना. ओके, फिर आता है टच, फिजिकल टच, और 4 हो गए. एंड द अदर वन इज एक्ट्स ऑफ सर्विस, मतलब आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे आपने किसी के लिए खाना बनाया या आप किसी को बाहर लेके चले गए. ओके, तो ऐसे 5 लव लैंग्वेजेस है. अब शिवानी, अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको चाइनीज में आई लव यू बोलती रहूंगी, ओके, एंड आई डू दैट विथ यू प्रोबेबली 100 टाइम्स, और आपको चाइनीज लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
नहीं, राइट? और मैं आपको 4 दिन तक भी बोलती रहूंगी तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. दैट्स नॉट अ लैंग्वेज जो आपने सीखी है, समझी है. ओके, वैसे ही अब हमारी सबकी अलग अलग लव लैंग्वेज होती है. हमें लव कैसे समझ में आता है, ये सबका इंडिविजुअल अपना अपना लैंग्वेज है. किसी को गिफ्ट्स देना या गिफ्ट्स रिसीव करना, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ सामने वाला पर्सन मुझे प्यार एक्सप्रेस कर रहा है. किसी के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना किसी के साथ, मतलब कि वो सामने वाला इंसान आपको प्यार करता है. सो ऐसे सब जन की लव लैंग्वेजेस अलग अलग होती है. ओके, आई हैड वन पर्सन जिन्होंने मेरे से बात की और बोला कि उनका बहुत सिमिलर सिचुएशन था. ओके, वो शादी करके गए थे एंड शी वॉज लाइक 2 साल हो गए हैं नूपुर, और मेरी मदर इन लॉ को इतनी ज्यादा सफाई पसंद है, मुझे सारा दिन सफाई करनी पड़ती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. ओके, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू टू क्लीन द हाउस लाइक अ लॉट, एंड आई एम जस्ट सो फेड अप, आई डोंट नो वॉट टू डू. आई सेड, सो वॉट डू यू डू इंस्टेड ऑफ यू नो डूइंग सफाई? सो वो क्या करते थे ना, सफाई नहीं करते थे बिकॉज दैट्स वॉट शी डिडंट लाइक, एंड वो और बहुत सारी चीजें करती थी, ठीक है, आगे पीछे की और बहुत सारी चीजें, बट देयर वाज नो पॉइंट ऑफ डूइंग वो आगे पीछे की चीजें. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग आई लव यू इन चाइनीज जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि यू नो वो आई लव यू बोल रहे हैं. तो मैंने उनको ये कहा खाली कि आप क्यों नहीं ये करते हैं कि जो उनको पसंद है आपने अगर वो कर दिया तो आपको वो शायद आधा घंटा ही करना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू गिव इन 3-4 आवर्स. आपने वो आधा घंटा किया और शी विल बी हैप्पी क्योंकि आपने उनकी लैंग्वेज में उनके लिए कुछ किया. एंड नाउ दैट यू नो कि उनको ये चीज पसंद है तो आप वो करके एक्सेप्ट करके उस चीज को वहीं खत्म कर दो ना, बिकॉज अब आपको यू हैव टू स्टे विद दैट पर्सन वेरी नेचुरली, ठीक है. तो आपको समझ आ गया है कि उनके लिए यू नो एक्सप्रेस करना कि यू केयर अबाउट द हाउस, यू केयर अबाउट द पीपल, यू केयर अबाउट हर, उनके लिए ये तरीका है कि आप घर का सफाई करें. सो व्हेन यू डू दैट, दैट शोज हर कि आप यू केयर फॉर हर. सो डू दैट, राइट? एंड शी सेड या इट मेक सेंस. तो मैंने कहा अगर आप वो करेंगे तो आप जो बाकी के 10-15 चीजें करते हैं टू यू नो मेकअप फॉर नॉट डूइंग द सफाई, आपको वो नहीं करना पड़ेगा. सो नाउ सबकी लव लैंग्वेज होती है. और अगर आप अपने घर में रहते हैं लोगों के साथ, तो अभी जब मैं लव लैंग्वेजेस बता रही थी, तो अगर आप एक एक जन को लेके थोड़ा सा सोचेंगे तो आप अपने आप फिगर आउट कर लेंगे कि किसकी क्या लव लैंग्वेज है. जस्ट फॉर एवरीबडी आई विल जस्ट रिपीट वंस द लव लैंग्वेजेस. सो द फर्स्ट लैंग्वेज दैट आई स्पोक अबाउट वॉज गिफ्ट देना. द सेकेंड वन वॉज वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन. वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन मतलब जैसे किसी ने आपके लिए कुछ किया, कुछ भी छोटा बड़ा, कोई आपके लिए 10 मिनट जल्दी आ गया घर, तो भी उस चीज को एक्नॉलेज करो. भले ही बहुत छोटी सी चीज है पर उसको एक्नॉलेज करना, किसी ने आपके लिए कुछ, आपका फेवरेट कलर पहना, समथिंग लाइक दैट. कुछ भी छोटा भी आपके लिए कुछ बनाया किसी ने, somebody's cooked something for you, anything, तो उनको खाली अप्रिशिएट करना. और नॉट ओनली आपके लिए, जस्ट जनरली ऑल्सो उन्होंने कुछ भी किया हो, अगर आप उनको कुछ थोड़ी सी भी अप्रिसिएशन के शब्द बोल दें तो दे फील लाइक वाओ, मतलब यू नो मेरा सब कुछ किया हुआ सफल हो गया, थिंग समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन. देन अनदर वन इज क्वालिटी टाइम देना. किसी किसी के लिए यू नो जैसे एक और एग्जाम्पल है, एक वाइफ हस्बैंड, उन लोग ने शादी की एंड थोड़े ही टाइम शादी के बाद दे वेंट टू फाइल अ डिवोर्स एंड उन लोग का काउंसलिंग हो रहा था एंड दे यूज टू लव ईच अदर अ लॉट, बट पता नहीं बन नहीं रही थी उन लोग की. तो जो काउंसलर है उन्होंने उनको कहा कि यू नो क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब एक दूसरे से. तो जो वाइफ थी उनका लव लैंग्वेज था गिफ्ट्स रिसीव करना, और जो हस्बैंड है उनका लव लैंग्वेज था क्वालिटी टाइम स्पेंड करना. पर उन लोग दोनों क्या करते थे, उन लोग अपनी लव लैंग्वेज में एक दूसरे से प्यार करते थे. तो जो वाइफ है वो हस्बैंड को गिफ्ट्स देती थी और जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था, विच यूज टू बॉदर ईच अदर. वाइफ बोलती थी मुझे तो गिफ्ट्स ही नहीं मिल रहे, हस्बैंड बोलता था मुझे तो क्वालिटी टाइम ही नहीं मिल रहा है इससे. नाउ व्हेन द काउंसलर अंडरस्टूड दिस, उन्होंने खाली उनको कहा कि आप प्लीज एक महीने के लिए जस्ट यू नो लव ईच अदर इन देयर लव लैंग्वेज. सो द हस्बैंड स्टार्टेड गिविंग गिफ्ट्स टू द वाइफ एंड द वाइफ स्टार्टेड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द हस्बैंड एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. Because there was a lot of love, but it was just that they were not expressing it the right way. Ghar mein bhi, okay, in your house also, with everybody for that matter. I'm not saying ki khud ko jo pasand hai, wo mat karo. But main ye bol rahi hoon ki agar aapne samne wale ki love language samajh ke wo cheez kar di jo unko pasand hai, to aapke liye cheeze bahut easy ho jayegi.
Ye bahut acha point share kiya hai. Aur पता है सभी ज्यादातर कपल्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए. मींस दोनों का आपस में बन क्यों नहीं रहा है, या अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बैठ पा रही है. एक ये क्वेश्चन भी आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्या बिलीव होना जरूरी है. मींस अगर आपको बिलीव होगा तो ही वो काम करेगा.
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक लॉ है जैसे बाकी लॉज है दुनिया के. जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है कि यू नो हर चीज अर्थ से जुड़ी रहती है, तो आप इस पे बिलीव करो या ना करो ये काम करता है. राइट, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कल सुबह उठ के बोलूँ कि मुझे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी पे बिलीव नहीं है तो मैं हवा में उड़ूंगी, मेरे पे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करेगा. राइट, सो आप अगर बिलीव करें या ना करें, ये लॉ है, ये अपना काम कर ही रहा है.
और हमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस है वो कितना टाइम तक करनी चाहिए, इसका कोई ड्यूरेशन होता है कि इतना टाइम तक आपको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए या रोज करना चाहिए?
देखो जितना करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने दिन तक करो, ये करो, ऐसा करो, इतने घंटे प्रैक्टिस करो. देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन इन दिस. आपको जितना ज्यादा करना है या जितना ज्यादा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है उतना आप करिए. अगर आपको यू नो इफ यू थिंक यू आर मोर अलाइंड, अगर आप ज्यादा रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए. अगर आपको लगता है कि आप ऑल्टरनेट डेज प्रैक्टिस करके भी उतने अलाइंड रह सकते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं. जैसे मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ द हमारा जो सेशन था उसके स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ तरीके हैं जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं. राइट, सो उसमें एक था अफर्मेशंस, फिर विजुअलाइजेशंस, ऐसे कुछ कुछ तरीके हमने डिस्कस किए हैं. तो आप अपना जो भी तरीका आपको लगता है कि ये मेरे लिए यू नो दिस विल बी गुड फॉर मी, इससे मैं कनेक्ट होती हूँ, तो आप वो तरीका यूज कर सकते हैं.
जैसे अफर्मेशन का तुमने बताया, तो अफर्मेशन आपको रोज देने हैं.
सी जब भी आप कोई भी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा था, सी यूनिवर्स का जो लैंग्वेज, जैसे आपका और मेरा लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो हम बात कर रहे हैं अभी वो है, कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है बाइनरी कोड्स 1010, वैसे ही यूनिवर्स जो है उसका लैंग्वेज है फीलिंग. ठीक है, उसको आप जो भी ये बोल रहे हैं, जो अभी हम वर्ड्स में शब्दों में जो बात कर रहे हैं उसको वो नहीं समझ में आता, उसका लैंग्वेज है फीलिंग. तो अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब उसको ये साइन दे रहे हैं कि मुझे और अच्छा फील करना है. अगर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, मतलब आप उसको ये साइन दे रहे हैं, उसको ये कम्युनिकेट कर रहा है यूनिवर्स को कि मुझे और डिसअपॉइंटेड फील करना है. अगर आप बहुत बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे हैं, मतलब आप उसको ये साइन दे रहे हैं कि मुझे और एक्साइटेड फील करना है, इसलिए आप मुझे ऐसी चीजें दो लाइफ में जो मुझे और एक्साइटेड फील करवाएगी. अगर आप बहुत एक्सट्रीमली सैड फील कर रहे हैं, मतलब आप वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो जब भी आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज करते हैं और अगर आप उसको फीलिंग्स के साथ करते हैं, तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली यू नो 100 times ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है. कभी कभी कि जब आप इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में, इन केस यू आर अ न्यू पर्सन टू दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत फील ना आए, पर जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई एक चीज यू नो हो गई है, आपने मैनिफेस्ट कर ली है, तो धीरे धीरे आपका वो फील करना बहुत नेचुरल हो जाएगा.
जैसे किसी ने पूछा है कि ऐसा कोई पर्सनली ऑनलाइन क्लास होता है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने में उनकी हेल्प कर सकता है.
हाँ बिल्कुल होते हैं, मैं खुद भी लेती हूँ. हम लोग जो, जैसे मैंने कहा कि हम बुक रीड्स करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काफी सारी बुक्स है, और हम जो रोंडा बायरन है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, हम उनकी बुक्स भी रीड करते हैं. और यू नो देर आर अ कपल ऑफ पीपल हु, जैसे सूरत में अगर आप बोले तो देर इज समबडी कॉल्ड एज श्वेता मर्चेंट, जिनसे मैंने भी यू नो आई डिड अ कोर्स फ्रॉम हर ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप सूरत की बात करते हैं, क्योंकि वी आर बेस्ड आउट ऑफ सूरत, सो वहाँ पे यू नो यू कैन अप्रोच मी. एंड जैसे मैंने जिनसे किया है, श्वेता मर्चेंट, हैप्पी माइंड उनके इंस्टीट्यूट का नाम है, इवन शी सर्टिफाइज यू फॉर अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स एज अ प्रैक्टिशनर, तो आप वो भी कर सकते हैं. काफी सारे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे आप सर्च करेंगे तो. इफ यू वॉन्ट टू, देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन.
तुम अगर कोई एक बुक सजेस्ट करना चाहो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो कौन सी बुक होगी?
बुक्स में आई वुड सजेस्ट, जैसे मैंने कहा, रोंडा बायरन की द सीक्रेट करके जो एक बुक है, दैट्स द सिंपलेस्ट बुक टू स्टार्ट विथ फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन. उसकी मूवी भी है द सीक्रेट की, आपको नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी. गेट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड यू विल गेट इट इन ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, तो दैट्स ईजी टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे काम करता है, क्या होता है उसमें. दैट्स लाइक अ बेसिक बुक फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन. उस बुक के पार्ट्स भी है, जैसे द सीक्रेट उसकी फर्स्ट बुक है, फिर द पावर करके उसका सेकेंड बुक है, द मैजिक उसकी थर्ड बुक है. सो द मैजिक इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल बुक, 28 days के उसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जो आप हर रोज फॉलो कर सके हैं. एंड उसमें इट्स बेसिकली अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड इट्स ब्रिलियंटली रिटन. सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, इफ यू गेट योर हैंड्स ऑन दैट बुक, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं. यस,
ओके. किसी ने पूछा है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी 5 साल की डॉटर है, तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं?
हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये एक लॉ है और वो सबके लिए काम करता है, तो फिर आप 5 साल के हो या 5 महीने के, आई थिंक इट वर्क्स फॉर एवरीबडी. आई नो अ लॉट ऑफ मदर्स जो अपने बेबीज के लिए यूज करते हैं, जो अभी तक यू नो देव नॉट इवन कम आउट ऑफ देयर वूम, सो 5 years तो डेफिनेटली यू कैन यूज इट.
ओके. और जैसे अगर कुछ अफर्मेशंस तुम बताना चाहो कि जिन्हें आपको रोज प्रैक्टिस करना चाहिए सोने से पहले, कहा जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सोने से 5 मिनट पहले एक्टिव होता है, कुछ ऐसे अफर्मेशंस हैं जो रोज बोल के सोने चाहिए और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं सबके लिए, तो वो तुम शेयर जरूर करो।
तो पर्टिकुलरली अफर्मेशंस की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे रात को सोने से पहले पहले तो आप आज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं दैट आई एम यू नो रियली ग्रेटफुल फॉर द डे आई हैड, कि आपने पूरा दिन जिया। ओके, सेकेंडली आप ये बोल सकते हैं कि आज जो भी हुआ आप उन इवेंट्स को आप लेट गो कर रहे हैं, राइट? सो अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं अफर्मेशंस को लेके, तो बहुत सिंपल है, जैसे आई एम काम एंड पीसफुल, आई हैव डन माय बेस्ट टुडे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डे एंड इट्स अपॉर्चुनिटीज, राइट? आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ, एवरीथिंग आई डिड टुडे लीड्स टू अ बेटर टुमारो। सो इस टाइप के जो अफर्मेशंस है, फिर आई फॉरगिव एवरीबडी और एनीबडी हु यू नो आई फेल्ट बैड फ्रॉम, तो आप अगर हर रोज फॉरगिव करके भी सोते हैं तो वो क्या होता है ना कि यू डोंट कैरी द बैगेज एवरी डे, राइट? तो इफ यू फॉरगिव एनीबडी हूएवर यू थिंक यू नो फॉर दैट पर्टिकुलर डे, अगर आपको थोड़ा सा भी आपकी किसी के साथ अनबन हो गई हो, आप अगर आप उनको माफ करके सो जाते हैं उस चीज को उसी दिन यू नो में छोड़ के सो जाते हैं, तो आप वो बैगेज नहीं कैरी करते हैं टू द नेक्स्ट डे। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू इन द नाइट इज बी ग्रेटफुल फॉर दैट डे, टेल योर सेल्फ कि आपने जो आज किया आपने अपना बेस्ट दिया और वो आपका कल क्रिएट कर रहा है, और आप फॉरगिव कर दीजिए जिसको भी आप अगर यू नो कोई है फॉरगिव करने वाला। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप रात को करके सो सकते हैं।
ओके, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। मैं एक अफर्मेशन रोज बोलती हूँ, आई एम ब्लेस्ड विथ लव अबंडेंस मनी रिस्पेक्ट हैप्पीनेस सक्सेस नेम फेम एवरीथिंग। तो ये अफर्मेशन मैं शायद एक दिन में 3 बार बोलती हूँ और 3 टाइम बोलती हूँ। उसमें एक होता है मॉर्निंग, एक होता है आफ्टरनून और एक होता है नाइट। जैसे अगर मॉर्निंग का छूट जाता है तो मैं आफ्टरनून या नाइट में तो मैं जरूर बोलती हूँ। तो क्या ये अफर्मेशन मैं सही बोल रही हूँ?
हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। सी अफर्मेशन इज जस्ट सम अ स्टेटमेंट जो आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने माइंड को। तो जब हम एक रेगुलर डे होते हैं, रूटीन में होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, या खुद को भी थॉट्स आते रहते हैं अलग अलग टाइप के, तो जब आप कोई भी अफर्मेशन बोलते हैं तो हमारा वापस ट्रैक पे आ जाता है दिमाग, राइट? तो जो आपने अफर्मेशन बोला, इट्स अ ब्यूटिफुल अफर्मेशन विच सेज दैट यू नो आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड अबंडेंस सक्सेस एंड एवरीथिंग दैट यू जस्ट मेंशन। So, yeah, definitely, it's a very good affirmation. And I'm sure जब आप ये बोले होंगे, you must be feeling good once you say it, right?
Very. और जब blessed बोलती हूँ ना, तो वो एक जो feeling होती है ना, अलग ही feeling होती है कि ऐसा लगता है कि yes, I am blessed. और एक attitude में बोलूँगी, I am blessed. ऐसे करके एकदम.
Yeah.
एक जो confidence होता है ना, वैसे.
नहीं, डेफिनेटली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अफर्मेशन बोलना और कैसे आप बोल रहे हैं वो भी।
तो
एंड जहां तक मेरा अंदाजा है, आपको थोड़ा टाइम हो गया होगा ये अफर्मेशन बोलते बोलते, राइट? सो देन वो बोलते बोलते यू नो वो धीरे धीरे वो फीलिंग भी आ जाता है।
हाँ नहीं, मीन्स ज्यादा दिन नहीं हुआ मुझे, कुछ 5 to 6 days ही हुए हैं अभी।
ओके, यू नो मे बी सेकेंड थर्ड डे से आपको फीलिंग आने लगा होगा।
मुझे फर्स्ट डे से ही आ गया था।
दैट्स ग्रेट। फिर तो हाउ डज इट गेट बेटर देन दैट?
फर्स्ट डे से ही आ गया था, क्योंकि एक मन में वो चाहता था कि आई कैन आई विल, ऐसा होता था।
दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, अमेजिंग।
यस। तो और फिर जब रात को सोती हूँ तब उस टाइम पे मैं ये सब बोल के सोती हूँ कि माय सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, माय सबकॉन्शियस माइंड इज हेल्पिंग मी।
हाँ हाँ, सी जो भी फीड करना चाहते हैं अपने दिमाग में, व्हाटएवर यू थिंक यू वांट टू, तो आप वो रात को करके सो सकते हैं एंड यू विल सी इवेंचुअली धीरे धीरे वो आपका दिमाग अब्सॉर्ब करके और वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे अगर आपको बोलना है कि जैसे किसी कोई कोई होते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो अगर वो अपने आप को ये बोल के सोएंगे कि आई एम वेरी काम पीसफुल, यू नो आई टेक थिंग्स लाइटली. ये नहीं कहना है कि आई डोंट गेट एंग्री, राइट? जो आपको चाहिए वो बोलना होता है अफर्मेशन में. ओके, दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, तो इसलिए आपको उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड भी यूज नहीं करना है. तो आप जो वो बोल के सोएंगे तो धीरे धीरे वो दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करके मानने लग जाएगा, राइट?
ओके, एक क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है, बहुत सारे जो लव बर्ड्स होते हैं वो सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं.
कैसे?
एज इन मतलब मैं सही एडवाइस दूंगी कि इफ यू आर सिंगल एंड यू वांट टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर, तो आप लिखिए ना वो क्वालिटीज जो आप चाहते हैं, जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं, और आप आंख बंद करके विजुअलाइज करिए कि वैसे ही इंसान जैसा आप चाहते हैं वो आपके साथ बैठा है, आप वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आप उनके साथ करना चाहते हैं, घूमने जाना, डिनर्स पे जाना, जो भी आप करना चाह रहे हैं, एंड हैव फेथ कि वो आएगा वो इंसान. और वन थिंग जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, जब आप डिसअपॉइंट होते रहेंगे, अगर थोड़ा भी टाइम लग रहा है वो सामने वाले इंसान को टू कम इन टू योर लाइफ, अगर आप कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंट होते रहेंगे तो आप अपना अलाइनमेंट खोते रहेंगे. तो अलाइंड रहने के लिए आपको फेथ रखना जरूरी है, और उसके लिए यू नो टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, बिहेव एज इफ यू ऑलरेडी गॉट द पर्सन. सो जैसे मैंने कहा यूनिवर्स का लैंग्वेज फीलिंग होता है, तो इफ यू आर गोइंग टू फील एज हैप्पी एज यू नो जब आपको वो इंसान मिल गया, तब आपको जो फीलिंग आएगी वो अगर आप अभी ही क्रिएट कर लें अपने अंदर, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड दैट पर्सन, क्योंकि आपने यूनिवर्स को वो सिग्नल दे दिया है लैंग्वेज में कि आई एम ऑलरेडी फीलिंग दैट, सो आई वॉन्ट दिस फीलिंग, राइट?
बहुत सारे लोग हैं जो एक ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मींस एक साथ उन टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है एक ही टाइम पे?
देखो जैसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो तुम एक ही विश के लिए या ड्रीम या गोल के लिए बहुत सारी टेक्निक साथ में यूज करोगे तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे. तो यू नो एक ही जगह पे फोकस करो अगर, और एक चीज के लिए एक टेक्निक यूज करो तो वो बेटर है. जैसे अगर आपके 3-4 विशेज हैं और आप अलग अलग विशेज के लिए अलग अलग टेक्निक यूज कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एक ही विश के लिए अलग अलग टेक्निक यूज करोगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, राइट? तो जैसे अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कोई गाड़ी चाहिए और उसके लिए मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, फिर उसके लिए मैं 4 चीज और करूंगी, तो फिर कैसे होगा कि दैट इज टू मच टू डू फॉर वन थिंग.
ओके,
दैट्स व्हाट. अलग विशेस के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं आप एट द सेम टाइम, सो वो चलेगा. एक ही विश के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं तो नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू मी.
ओके, जैसे हमारा पॉडकास्ट वुमेन से रिलेटेड है तो हम सारे टॉपिक्स वुमेन से रिलेटेड ही शेयर करते हैं और हर टॉपिक के बारे में बात करते हैं. तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो वुमेन कंसीव नहीं कर पा रही है, जो कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो क्या वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज करके कंसीव कर सकती है?
ऑफकोर्स बिल्कुल कर सकती है. मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ या ये प्रॉब्लम है या ये इशू है, उस पर फोकस करने के बदले सारा फोकस आपका वहाँ होना चाहिए कि यू नो यू ऑलरेडी हैव द बेबी एंड हेल्दी बेबी हो चुका है और आप कंसीव कर चुके हो और जो भी चाहिए सब उस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, तो बहुत नेचुरली यू नो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स, हर चीज़ उस तरीके से धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं. तो डेफिनेटली आप जब सब चीज के लिए कर सकते हैं तो इस चीज के लिए भी जरूर कर सकते हैं.
तो इसमें जैसे कुछ एक या दो टेक्निक तुम बताना चाहो कि हम क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो.
जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में बहुत सिंपल चीज है जो आप हर चीज में यूज कर सकते हैं, कि अगर आप जो बनना चाहते हैं तो आप वैसे यू नो स्टार्ट लिविंग लाइक द पर्सन वुड लिव. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि एक सक्सेसफुल पर्सन क्या करता होगा, राइट? वो 10 बजे तक सो रहा है, फिर वो कभी मनाया तब काम कर रहा है, कभी मनाया तब काम नहीं कर रहा है, एवरी डे लेट नाइट पार्टीज कर रहा है. तो आप देखेंगे कि एक सक्सेसफुल इंसान जो है जिसने कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया है वो कुछ एक चीज फॉलो करता होगा, कोई एक टाइम पे उठता होगा, कुछ पर्टिकुलर घंटे काम करता होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मे बी 3 साल बाद आप एक पर्टिकुलर मकाम पे पहुंचे, तो आपको ऑलरेडी वो इंसान के जैसे लाइफ जीना चालू कर देना चाहिए अभी से।
उसमें क्या कर सकते हैं, मीन्स जैसे
हाँ,
कैसे
तो
लाइफ।
आई टेल यू, राइट। सो जैसे अगर आप यू वॉन्ट टू कंसीव अ बेबी, ओके, सो अगर हम इस एग्जाम्पल को उसमें फिट करते हैं, तो वॉट विल यू डू वंस यू नो दैट यू कंसीव द बेबी? यू विल प्रोबेबली गो शॉप, राइट? आप वैसी चीजें पढ़ेंगे, वैसी इंफॉर्मेशन को आप टेक इन करेंगे, प्रेगनेंसी रिलेटेड चीजें सुनेंगे, देखेंगे, वैसी बातें करेंगे, शॉपिंग करेंगे बच्चे के लिए। तो वो सब आप ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करना चालू कर दो, एज इफ यू ऑलरेडी कंसीव द बेबी। सो यू आर इन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ यू ऑलरेडी कंसीव्ड। सो द मोमेंट यू गेट ऑन टू दैट फ्रीक्वेंसी, तो आपका कंसीव करने का जो प्रोपोर्शन है ऑफ गेटिंग इट, वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 100% हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। किसी का तुम्हारा हेल्थ है, बॉडी है, जो भी, वो सब बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। बट हाँ, तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कंसीविंग, डेफिनेटली इसमें तुम उसको एक चांस देते हो कि वो बढ़ जाए।
और ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल सुने भी हैं
हाँ
कि जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ वुमेन्स ने कंसीव भी किया है।
हाँ जैसे आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि कभी कभी किसी को दे डोंट हैव अ चाइल्ड, बट उन लोग कभी कभी अडॉप्ट करते हैं, एंड द मोमेंट दे अडॉप्ट बेबी, उसके कुछ सालों बाद उनको खुद के बेबीज हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी
यस
काफी एग्जाम्पल्स देखे
यस
हैं। तो वो क्यों होता
हाँ
है? बिकॉज तुम वो डेवलप कर लेते हो ना, यू गेट इन टू दैट फ्रीक्वेंसी के हाँ आई हैव अ बेबी, तो फिर
यस
वो अपने आप वो हॉर्मोन चेंज हो जाते हैं, देन यू कैन कंसीव ऑल्सो।
बहुत सारी डिजीज ऐसे होते हैं, बीमारियां ऐसी होती है जो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाती है, जैसे कैंसर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी क्या ये क्योर हो सकती है?
इसके लिए मैं आपको आई हाईली रिकमेंड अ बुक जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस हे। ओके, मैं वापस रिपीट करती हूँ, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस हे। ये इतना ब्यूटीफुल बुक है, एंड इनकी जो ऑथर है, इनको ऑलरेडी कैंसर डिटेक्ट हुआ था व्हेन शी वाज अबाउट 45+, एंड वो 90 इयर्स तक, शी लिव्ड फॉर 90 इयर्स विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन टू हील हर कैंसर। तो उन्होंने अफर्मेशन से बहुत सारा खुद पे काम करके, जो कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे उनको जो भी कैंसर था उसके लिए वो, जैसे फॉर एग्जांपल मसाजेस लेती थी, ये सब करती थी, तो शी क्योर्ड एंड हील हर सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे। और जब उन्होंने ये किया इनकी ये प्रोसेस में, सो शी रियलाइज कि जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उनका कहीं ना कहीं मेजर रूट हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये जो बुक है उसमें आप देखेंगे कि हर बीमारी का इमोशनल रीजन लिखा हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे छोटी से छोटी चीज, जैसे हमें एक्ने होता है या कुछ भी, स्किन पे आपको कुछ इरिटेशन हुआ है, फ्रॉम अ वेरी बिग थिंग टू कैंसर टू डायबिटीज, ओके, ऐसी बीमारियों के, ए से लेके जेड तक, जैसे डिक्शनरी होती है वैसे ए से लेके जेड तक, इसमें जितनी भी बीमारियां हैं सब बीमारियों को लेके, और उसका इमोशनल रीजन क्यों आपको बीमारी हुई है, और उसके लिए आप क्या अफर्मेशन बोल सकते हैं जिससे इट कैन हील यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ विच विल बी वेरी कनेक्टिंग। जब जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, एज होती है, तो उन लोगों को घुटनों में बहुत लोगों को इश्यूज आने लग जाते हैं, राइट? तो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें अपनी फ्यूचर की चिंता होती है, जो भी आगे थोड़ा बहुत जितना भी फ्यूचर बचा है उसकी उन्हें चिंता होती है, तो उस वजह से घुटनों में पेन होता है। तो वो मेजर रूट तो फियर है इमोशन के तौर पे, और वो ट्रांसलेट हो जाता है फिजिकल पेन में। तो फिर उनको कुछ ना कुछ होएगा जिससे उन्हें घुटनों में प्रॉब्लम होती है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, सब छोटी 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 बॉडी के पार्ट्स को लेके उन्होंने, और उसमें तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको लेके उन्होंने सारे उसमें इमोशनल रीजंस दिए हुए हैं। तो बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अफर्मेशन से, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। खाली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, अलॉन्ग विद दैट जो भी जरूरी यू नो मेडिकेशन है या जो भी चीजें हैं वो आप साथ में चालू रख सकते हैं और फिर इसको भी यूज करें, तो आपका प्रोसेस जो है हीलिंग का वो 10 times फास्टर हो जाएगा।
एक और चीज आती है इसमें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है ग्रुप में फॉलो करना, वो कितना टाइम ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप खुद करते हैं और अगर ग्रुप में करते हैं तो क्या उन सब लोगों की फ्रिक्वेंसी वैसे ही वर्क करती है?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई थिंक आई कैन गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर दिस। मैंने जब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक है द मैजिक, तो उसका जब मैंने बुक रीड किया था तो वी वर अबाउट 30-35 पीपल जो हम साथ में कर रहे थे बुक रीड। तो हम लोग हर रोज रीड करते थे, इसकी जितनी भी इसमें चीजें लिखी हुई थी वो फॉलो करते थे और ये सब करते थे। तो जो सबकी जो एनर्जी होती है वो एक तो सिमिलर सी हो जाती है और फिर सबकी साथ में वो चीज काम करती है। तो आपको पता है ना कि कोई भी चीज आप ग्रुप में करेंगे तो वो बहुत इजीली हो जाती है। एक जन कोई जैसे आप खाना ही बना रहे फॉर एग्जांपल, तो एक जन कोई बना रहा है तो उसको शायद 2 घंटा लगेगा, पर अगर 3 जन मिलके बना रहे हैं तो वो चीज आधे घंटे में बन सकती है, राइट? तो जो काम आपको शायद ज्यादा टाइम लग रहा होगा मैनिफेस्ट करने में, तो अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो काफी बार, क्योंकि हो सकता है आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं कम पड़ रही हो पर किसी और की एनर्जी आपके साथ मिल जाती है तो वो ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो डेफिनेटली ग्रुप में काफी इफेक्टिव होता है, बट ऐसा हम हर बार नहीं पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ग्रुप में करें, राइट? क्योंकि ये तो इट्स लाइक एन ऑनगोइंग प्रोसेस, आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई रीजन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या उसका कुछ ना कुछ मेथड या टेक्निक यूज करना पड़ेगा और हर बार आप ग्रुप नहीं ढूंढ सकते। यू नो यू गेट द चांस कि आप ग्रुप में कर सकते हैं कुछ भी, कोई कोर्स करें, कोई क्लास करें, कुछ भी, तो वो डेफिनेटली यू शुड एक्सपीरियंस दैट एनर्जी जो एक ग्रुप की होती है जब उन लोग सब ये फ्रीक्वेंसी पे हैं। बट बाकी हमें यू नो इन आवर रेगुलर डे टू डे लाइफ तो आई थिंक हमें,
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत लोग बोलते हैं मिरर टेक्निक यूज करके आप अफर्मेशंस बोलो और जो भी आप टेक्निक करना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो क्या ये सही है?
बिल्कुल आप कर सकते हैं मिरर टेक्निक यूज, मतलब दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जिससे, सी इट इज लाइक के बहुत सारी टेक्निक्स है, आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देख सकते हैं, आपको कोई टेक्निक कनेक्ट होगी कोई नहीं होगी। सो मिरर टेक्निक में आप मिरर में सामने सुबह खड़े रहिए और मिरर के सामने और जो भी आपके अफर्मेशन है आप बोलना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली मिरर के जो अफर्मेशन है जो आप बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ इमेज के लिए, ये सब के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि आप खुद को ये चीज बोल रहे हैं, राइट? खुद को आप देख रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली कमांडिंग those affirmations to your own self. तो specifically आपकी self image अच्छी करने के लिए, confidence बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए mirror वाली जो technique है वो ज़्यादा effective है। बाकी general affirmations के लिए अगर आपको connect होता है ये method तो हाँ it's a good method.
Okay. तो इसका एक part meditation भी है?
हाँ definitely. Meditation is one of the major techniques ना, तुम खुद को पहले शांत कर रहे हो और फिर उस स्टेट में तुम अपने आप को कुछ भी यू नो यू आर ट्राइंग टू विजुअलाइज या तुम अफर्मेशंस बोल रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि आप देखोगे अगर जो पानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर उसमें बहुत सारा कुछ आपने डाल दिया या आप हाथ घुमा रहे हो और नीचे कुछ है पानी के नीचे तो आपको दिखेगा नहीं, पर जैसे ही वो जैसे वेव्स है समझो कि, पर वेव्स शांत हो गई तो आपको जब वो नीचे जो भी है वो दिखाई देगा पानी के नीचे, क्योंकि अब वो शांत हो गया है। तो वैसे ही हमारा दिमाग जो है उसमें इतना कुछ चल रहा होता है, इतना कुछ चल रहा होता है, पर जब आपको जो एक्चुअली चाहिए, जिस चीज पे फोकस करना है, वो चीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बट जब आप मेडिटेशन जैसी कोई चीज करते हैं तो मतलब आप ये समझो कि जैसे पानी शांत हो जाता है वैसे आपका दिमाग भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, और जब वो शांत हो जाता है तो इट इज सो मच इजियर फॉर यू टू फोकस ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट टू फिगर आउट कि आपको क्या चाहिए। पहली बात तो काफी बार हमें यही नहीं पता होता है कि हमें चाहिए क्या। तो डेफिनेटली मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक।
इसमें एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि तुमने बताया कि विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में आप विजुअलाइज कर सकते हो, मन को शांत रख सकते हो, तो जब आप विजुअलाइज करते हो तो फिर मन कैसे शांत रहेगा? मीन्स वो तो आप अंदर इमेजिन कर रहे हो कुछ।
तो मेरा कहने का ये मतलब था कि पहले आपने मन को शांत कर लिया और फिर आपने विजुअलाइज किया।
ओके, तो कितना टाइम करना है मन को शांत मेडिटेशन?
इट डिपेंड्स ना, आप कितने डिस्टर्ब या नॉट एग्जैक्टली डिस्टर्ब, पर आप कितनी कितनी हलचल है आपके दिमाग में. हो सकता है किसी को बैठते ही 2 मिनट खाली आंख बंद करके बैठी और यू नो या तो फिर अपनी ब्रेथ पे फोकस किया या बस शांत बैठे रहे 2 मिनट तो वो शांत हो गए. हो सकता है किसी को 10 मिनट लगती हो अपने दिमाग को शांत करने में. तो वो तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको खुद को एक्सपीरियंस होके पता चलेगा कि अच्छा मुझे इतना टाइम लगता है टू काम माई माइंड. एंड आप डिफरेंस देखेंगे. जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले एक वर्कशॉप रखा था जिसमें हम लोग मेडिटेशन और अफर्मेशंस करते थे. तो हम पहले मेडिटेट करते थे फॉर अबाउट 10 मिनट्स और फिर हम 10-12 मिनट अफर्मेशंस बोलते थे. तो मेरे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने मुझे ये फीडबैक दिया था कि हम लोग ने ये चीजें अलग अलग तो बहुत बार की है, मेडिटेशन भी किया और अफर्मेशन भी किया है, पर जब इन चीजों को हमने कंबाइन कर दिया साथ में तो उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ. क्योंकि मेडिटेशन में तुम क्या कर रहे हो, खुद को शांत कर देते हो और फिर तुम उसको अफर्मेशन से चार्ज करते हो. तो वो बहुत ही पावरफुली काम कर रहा था.
मतलब पहले आप 10 मिनट अपने मन को शांत करो और जस्ट उसी के बाद आपको अफर्मेशन
तुरंत 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 हाँ, या विजुअलाइज भी कर सकते हो जो भी.
ओके, तो कितनी देर अफर्मेशन बोलना है या कितनी देर विजुअलाइज करना है फिर उसके बाद,
वो आप पे डिपेंड करता है. जैसे आप यू हैव अ सेट ऑफ या लिस्ट ऑफ अफर्मेशंस, आप गूगल करेंगे कोई भी चीज के लिए आपको अफर्मेशन चाहिए आप गूगल कर सकते हैं. मनी है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, कोई भी चीज के लिए. तो आप अपनी सेट ऑफ अफर्मेशंस निकाल के रखिए. अगर यू नो जितने भी आपके पास है 10, 12, 15, 20, तो आपको जितना टाइम लगता है बोलने में, 5 मिनट लगती है, 7 मिनट लगती है, आप एक बार रीड कर रहे हैं, 2 बार रीड कर रहे हैं, सुन सकते हैं ऑडियोज या अफर्मेशंस के बहुत सारे. विजुअलाइजेशन का ऐसा है कि आप क्या चाहते हैं तो आपको कितनी डिटेल में उसको विजुअलाइज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को घर चाहिए, तो कोई हो सकता है कि खाली एक घर विजुअलाइज कर रहा है, कोई हो सकता है कि डिटेल विजुअलाइज कर रहा है कि घर में मुझे ऐसा कलर चाहिए, ऐसा फर्नीचर चाहिए, ये रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो उसको विजुअलाइज करने में आपको हो सकता है कि 5-7 मिनट से ज्यादा लग जाए. तो इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं. इसका कुछ भी यहाँ कोई रूल्स नहीं है कि आपको ऐसे करना है, इतने मिनट बैठना है, ये करना है, वो करना है. सब कुछ आपके विशेस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए.
सबसे मेन चीज होती है कि जैसे अगर हमने 1 या 2 दिन उसको बहुत डिटेल में विजुअलाइज किया, लेकिन उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा, मतलब पूरा एकदम डिटेल में हर चीज नहीं दिखती है आप, मतलब
मत करिए ना, दैट्स ओके.
तो नॉर्मली हम फिर उस टाइम पे
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एक बार आपने इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक बार आपने बीज बो दिया, फिर आप उसको हर रोज खाली यू नो आप उसको खाली पानी दे रहे हैं. तो 1 या 2 बार आपने अगर डिटेल में विजुलाइज कर लिया तो आपने वो बीज बो दिया. अब आप हर रोज अगर थोड़ा जैसे एक बार आपने किया तो आपने 15 मिनट्स कर लिया डिटेल में. अब अगर हर रोज आप खाली 5 मिनट्स भी कर रहे हैं, मतलब आप उसको पानी दे रहे हैं.
ओके,
दैट इज इनफ. आप कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं.
ओके,
तो बट एक बार वो जो आपने किया वो आप प्रॉपरली कर लीजिए. जो 1 या 2 बार आपने किया जो डिटेल में, बी वेरी स्पेसिफिक, बी प्रॉपर इन दैट. उसमें फिर आप चूको मत. बस फिर आप उसको 5 मिनट करेंगे तो भी इट्स फाइन.
ओके, अब एक चीज मैं और लास्ट चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारी टेक्निक्स होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो ऐसी कोई टेक्निक जो तुम सजेस्ट करना चाहो कि ये टेक्निक आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों को, आप तुम्हारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितने लोगों को तुमने कोच किया है और इसमें हेल्प की है, तो ऐसी कोई टेक्निक जो लोगों को करनी चाहिए, ना ज्यादा टफ हो ना ज्यादा ईजी हो, नॉर्मल टेक्निक हो, और तो वो टेक्निक क्या होगी?
बिल्कुल, मैं एक टेक्निक जो बताऊंगी दैट वुड बी ग्रैटिट्यूड. आप ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करिए, लिखो, बोलो, जैसे भी आप कर सकते हो. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हमें इतना अबंडेंस मिला हुआ है लाइफ में फ्रॉम नेचर, फ्रॉम द यूनिवर्स, पर हम उसके लिए उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हैं. मतलब हमें लगता है कि ठीक है यू नो हमें मिल गया है सब कुछ, हाँ हम 1-2 बार बोल देते हैं, पर उसके कंपैरिजन में हमारा जो कंप्लेनिंग, क्रिबिंग और वो जो है ना वो काफी हद तक ज्यादा होता है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने स्टार्ट किया था तब कहा था इट इज सिंपल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो जब हमारा कंप्लेनिंग क्रिबिंग इतना ज्यादा होता है ना, तो हम वैसी ही चीजें वापस वापस अट्रैक्ट करते रहते हैं लाइफ में. तो जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुलनेस में रहेंगे, थैंकफुलनेस में रहेंगे कि हाँ मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास इतना कुछ है. हर छोटी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, या आप बस भगवान या यूनिवर्स जिसको भी आप मानते हैं उसको खाली आप थैंक यू बोलते रहेंगे ना, तो इट इज वेरी नेचुरल कि आपके पास और अबंडेंस आते रहेगा, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में हैं कि मेरे पास इतना है. जी,
इसमें एक चीज है, तो ग्रेटिट्यूड लिखना जरूरी नहीं है ना, आप बोल के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं.
और डेफिनेटली आप बोल के भी एक्सप्रेस कर ही सकते हैं ग्रेटिट्यूड, पर मैंने दोनों टेक्निक्स, मैं पर्सनली अगर मेरी बात करती हूँ तो मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया है, पर जब मैं लिखती हूँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मेरे लिए. आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे भी, बट मेरे लिए पर्सनली लिखा हुआ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है. एंड इट हार्डली टेक्स 5 to 7 minutes, मतलब हम 24 hours में से यू नो 5-7 minutes तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं. एंड इट्स जस्ट सोच की बात है या प्रायोरिटी की बात है.
राइट.
तो मेरे लिए ये एक टेक्निक है जो बहुत काम करती है, और मैं काफी टाइम से इसको कर रही हूँ, और आई डोंट थिंक मैं बंद भी करूंगी. मतलब इवन इफ आई लर्न समथिंग विच इज बिगर देन दिस, तो भी ये टेक्निक मुझे लगता है वेरी सिंपल एंड वेरी डूएबल ऐसा.
ओके, थैंक यू सो मच नुपुर. आज बहुत सारा और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन तुमने हमारे साथ शेयर किया. आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी जिससे सारे लोग इसके बारे में और पूरा डिटेल में जान पाए. क्योंकि अगर आधा अधूरा होता तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे डाउट्स होते हैं, और जो लोग पहली बार फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, शायद तुमने भी इतने सारे सेशन किए हैं, बुक रीडिंग का सेशन किया है, और बहुत सारे लोगों को शायद बिलीव भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने खुद ने फॉलो किया, उनके बहुत सारे डाउट्स भी तुमने शायद सॉल्व किए हैं. तो थैंक यू सो मच नुपुर आज हमारे पॉडकास्ट पे 4 चांद लगाने के लिए, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे ऑडियंस तक वो सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स और जितनी भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो सब सॉल्व करने के लिए. थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच शिवानी फॉर हैविंग मी. बहुत ही मजा आया तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन करके, बातें करके. इट वॉज रियली फन. And looking forward to more such conversations.
Thank you. Thank you so much.